हमारे बीच परम श्रद्धे परम आदरणीय राजयोगी भ्राता निर्भय जी मौजूद हैं। जिन्होंने जिंदगी का सफर सागर की गहराइयों से शुरू किया था, आप नेवी मर्चेंट में रहे, सेवाएं दी, परमात्मा खोज जो मन में थी लगन बन गई और आपको आध्यात्म का किनारा मिला, बाबा मिला। बाबा को पाने के बाद आपके जज्बातों में फिर एक तूफान आया और मन ने गवाही दी, ये सागर छोड़ दो, इस सागर के करीब आ जाओ, और आप शिव सागर के करीब आ गए। आपने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। साकार बाबा के अंग संग रहे, आज इसीलिए साकार ब्रह्मा बाप को सामने रखते हुए विषय रखा था कि कैसे बाबा ने जिम्मेवारी निभाते हुए भी जीवन मुक्त स्थिति रखी। मैंने बाल्यकाल से भ्राता जी को बहुत बहुत देखा है, कभी दूर से कभी समीप से। मैंने पाया है कि उनके भी जीवन में ब्रह्मा बाप जैसा रहमो करम, उनके जीवन में पूरे विश्व को संदेश दे देने का भाव, मुझे कहने में आता है कि वो उच्च हैं दृष्टिकोण में, उत्तम हैं विकास में, उद्दाम हैं नई पद्धतियों में, उदय हैं उत्साह में, उभार है व्यक्तित्व में, उन्नति के स्वयं आगार हैं, उत्साह व्यक्त करने में, उमंग किसी को भरने में भ्राता जी का कोई मिसाल नहीं। और आप उत्कर्ष हैं, उजागर हैं, ब्राह्मण कुलभूषण हैं, बेताज बादशाह हैं हमारे ब्राह्मण परिवार के। साथ साथ दिल खोल के तालियां बजा सकते हैं। मुझे कोई संकोच नहीं है ये कहने में कि ये वो मसीहा है जो न केवल अपनी पीड़ाओं का दर्द जानते हैं, वरन दूसरे की आंख के आंसू का मर्म जानते हैं। और आपने इसीलिए दादी को बहुत प्यार से अनुरोध करके ग्लोबल हॉस्पिटल की नींव डलवाई थी कि हमारे ब्राह्मण कुलभूषण, पब्लिक की बात तो जाने दीजिए, अगर यहाँ दर्द भी होता था दांत में तो लोग पालनपुर दौड़ के जाते थे आने जाने वाले। तो भ्राता जी ने जब ग्लोबल हॉस्पिटल की नींव डाली तो कहने में आता ब्रह्मा कुमारी इसका हॉस्पिटल है, लेकिन जो लाखों लोगों का यहाँ टर्नओवर होता है वो सब उस हॉस्पिटल में बहुत सारी सेवाएं लेते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि रहमो करम के मसीहा हैं, और आज उनके सामने जो विषय रखा है, मैं नहीं बता रही कि वो सेक्रेटरी जनरल हैं, मैं नहीं बता रही कि वो हमारे एजुकेशन विंग के प्रेसिडेंट हैं, हमारी जो वर्ल्ड रिन्यूअल निकलती है उसके चीफ एडिटर हैं, लेखनी के भी धनी हैं, जहां वाणी और हृदय के धनी हैं। आज मुझे उन्होंने ये सुनहरा मौका दिया है कि मैं उनसे कुछ सवालात करूं और वो उस प्रश्न के उत्तर में बाबा से संबंधित बड़े मीठे मीठे अनुभव आप सबको सुनाएंगे। ओम शांति।
यहां बैठिए। थैंक यू। ओम शांति। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। कौन सा दिन है आज? महाशिवरात्रि। और बाबा ने कहा ये बाप का भी अलौकिक जन्म का दिन है और आप बच्चों का भी अलौकिक जन्मदिन है, तो अपने जन्मदिन के लिए भी और बाप के जन्मदिन के लिए भी खूब ताली बजाओ। देखा गया है कि सारे वर्ष में कई त्योहार आते हैं, लेकिन ऐसा त्योहार कोई और नहीं है जिसमें कि हम समझें कि हमारा भी आज जन्मदिन है। कितने भी उम्र हो जाए, कितने भी वर्ष बीत जाएं, लेकिन बर्थडे जब मनाते हैं तो बचपन वापस आ जाता है और ऐसे लगता है कि हम फिर से बचपन में आ गए। तो आज हम सब का अलौकिक जन्मदिन है, शिव बाबा का भी अलौकिक जन्मदिन है, त्रिमूर्ति कहो या त्रिदेवों का भी अलौकिक जन्मदिन है, और फिर साथ में मातेश्वरी सरस्वती और पिता श्री ब्रह्मा बाबा का भी अलौकिक जन्मदिन है, और सभी ब्राह्मण बच्चों का, सब जो भी हैं, चाहे देश में हैं, चाहे विदेश में हैं, चाहे भारत में हैं, चाहे नेपाल में हैं, चाहे और देशों से हैं, लेकिन आज के दिन हम सब का अलौकिक ईश्वरी जन्मदिन है। और ऐसे जन्मदिन पर तो कितने केक बनने चाहिए? 10 लाख कम से कम। तो आज बहन जी ने खास लिखत भेजी थी, ब्रह्मा बाप के समान जिम्मेवारी निभाते हुए जीवन मुक्त स्थिति कैसे रहे। तो मैंने कहा इसमें आपका जो भाव है वो थोड़ा आप पास बैठ करके कुछ प्रश्न रूप में पूछते जाना और मैं जवाब देता रहूंगा। तो एक प्रकार से मेरे एग्जाम का दिन है आज। क्योंकि बहन मनोरमा बहन है हमारी टीचर आज और हम हैं इनके स्टूडेंट, आप सब भी सहयोग देना। जी बहन जी,
ये भाई साहब का बड़प्पन है, वो हमारे वरिष्ठ हैं, लेकिन फिर भी कहीं कुछ सवालात होते हैं। आज जब ये बात आई कि कुछ सवाल करें, मैं पहले से तैयार नहीं हूं, लेकिन फिर भी मेरे मन में आया कि जब ब्रह्मा बाप समान जिम्मेवारी निभाते हुए, हम कोई भी जिम्मेवारियां निभाते हैं तो जिम्मेवारी निभाते हुए एक समर्पण का भाव होता है, एक पैशन होता है, एक मन और बुद्धि में लगन होती है, सुबह और शाम केवल अपने लक्ष्य की ओर ही निशाना होता है, वहीं ध्यान होता है। तो ब्रह्मा बाप में भी निस्संदेह ऐसा लक्ष्य था, शिव बाबा ने उन्हें विश्व कल्याण का कार्य सौंपा था, पूरी जिम्मेवारी, पूरी समर्पणमयता, पूरी तन्मयता के साथ उन्होंने निभाया। और उसके साथ दूसरा पहलू है कि वो जीवन मुक्त भी हुए। निस्संदेह उन दोनों स्थितियों का तालमेल भ्राता जी ने अपनी आंखों से एक दो साल नहीं वर्षों देखा साथ साथ रहकर। तो हम भ्राता जी से ये जानना चाहते हैं, क्या दोनों स्थितियां संभव हैं तो कैसे, और बाबा उन्हें कैसे निभाता था?
एक अपने जीवन में निश्चित फैसला करना पड़ता है, निश्चय के आधार से। जब से ईश्वरी ज्ञान मिला 59 साल हो गए हैं। ज्ञान मिलने के थोड़े समय के अंदर ही अच्छी तरह से निश्चय हुआ कि ये कल्प पूर्व की तरह फिर से परमात्मा पिता इस धरा पर आकर सत्युगी नए संसार की रचना के लिए वो ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग सिखा रहे हैं जिसका वर्णन सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता में है और वो सन्मुख सिखा रहे हैं, उसका अनुभव प्रैक्टिकल हुआ, साकार में निराकार का अनुभव किया और उसी समय निश्चय हुआ और निश्चय किया कि ये जीवन अब और बातों में ना लगा करके ईश्वरी सेवा के कार्य में लगाएं ताकि हमारे अनेकानेक भाई बहने भारत में, उस समय तो भारत ही सामने आता था लेकिन आज कह सकते हैं भारत में तथा अन्य देशों में जहां पर भी भाई बहने हैं जो भी इस धरा पर अपना पार्ट बजा रहे हैं, हरेक का ये हक बनता है कि हम अपने परम पिता से अपना वर्षा प्राप्त करें। और वर्षा क्या है? जीवन मुक्ति, मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए जो उनके द्वारा हमें ईश्वरी ज्ञान मिल रहा है वो ज्ञान सबको मिलना चाहिए। और उसमें विशेष रूप से यूं कहेंगे कि तीसरा नेत्र सबका खुल जाता है, दिव्य नेत्र कहो, ईश्वरी ज्ञान के आधार से जो दिव्य नेत्र मिलता है उससे ही वास्तविकता को हम पहचानते हैं, उसी के द्वारा ही परमात्मा पिता को पहचानते हैं, उसी के द्वारा ही हम सेल्फ रियलाइजेशन भी तभी कर सकते हैं। तो ये ईश्वरी ज्ञान और फिर उसके साथ साथ कि हमें अपने जीवन को इतना उच्च बनाना है, इतना दिव्य गुण संपन्न बनाना है कि मनुष्य से देव पद को प्राप्त कर सकें, उसके लिए हमें ईश्वरी विद्या जो परमात्मा प्रदान कर रहे हैं उस विद्या का अध्ययन करना है, अभ्यास करना है और उसको अपने जीवन में ले ला करके अच्छी तरह से बाप समान बनने का लक्ष्य रखना है। क्योंकि बाबा ने हर महावाक्यों में मुरली के अंदर विशेष रूप से आद से लेकर के यही इसी बात पर जोर दिया, फॉलो फादर एंड मदर, बाप और माँ उनको फॉलो करो। तो जितना बाप समान बनेंगे उतना ही यूं कहें कि रूहानी नशा भी चढ़ेगा और साथ साथ जीवन में अलौकिकता आएगी और एक्यूरेसी आएगी। तो इसी लक्ष्य से जो पुरुषार्थ शुरू से किया, यूं तो शुरू शुरू में बिल्कुल स्टूडेंट लाइफ की तरह ही है, जैसे पढ़ाई पढ़ी जाती है, चार्ट रखा जाता है और फिर करेक्शन मिलती है, उस करेक्शन के अनुसार जीवन में कई मोड़ आते हैं, हर मोड़ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई सावधानी मिलती है, उस सब बातों को साथ लेते लेते एक दिन ऐसा भी आ गया कि जब साकार बाबा अव्यक्त हो गए बड़ी दादी प्रकाशमणि जी निमित बनी दीदी मनमोहिनी के साथ सारे यज्ञ की संभाल करने के लिए। उस समय दादी जी ने बॉम्बे से मुझे यहां बुला लिया और तब से लेकर के मधुबन में रह करके मधुबन की कारोबार को देखना, मधुबन के अंदर आने वाले भाई बहनों के लिए सब सुविधाओं का ध्यान रखना और उसके साथ साथ हेडक्वार्टर पर हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, उसका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हुआ था शुरू में, तो सारे वर्ल्ड के लिए ये यूनिवर्सिटी है। उसके कारण आप सोच सकते हैं कि कितनी कारोबार रह सकती है, लेकिन मैंने देखा कि मैं अकेला भी नहीं हूं, दादी जी अकेले भी नहीं हैं, दीदी जी अकेले भी नहीं हैं, लेकिन बाबा के बहुत बहुत योग्य बच्चे सब तरफ हैं, हर वर्ग के हैं, हर बैकग्राउंड के हैं, हर अनुभव के हैं, और उन सब के सहयोग से, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनता है, उसका प्रैक्टिकल ये अनुभव हो रहा है। तो आज आप सबके सामने कुछ प्रश्न उत्तर के रूप में बहन जी हमसे कुछ बुलवाना चाहती हैं, हम बोल देंगे, जो जो आप बोले पूछेंगे हम बोलते जाएंगे जी।
हमारा ये बेहद का परिवार, परिवार के रूप में भाई जी जाना जाता था, और बाबा ने भी सबकी पालना मीठे बच्चे कहकर के ही की। लेकिन जब आप आए, भ्राता जगदीश जी आए, इन्होंने इसको विश्वविद्यालय के रूप में व्यवस्था देनी चाहिए, कुछ नियमबद्ध तरीके से इसको एक आकार देना चाहा। आपने भी ऑफिस संभाला, फिर विदेश की सेवाएं शुरू हो गई, तो कैसे कैसे आप उन्हें बाबा के पाले हुए बच्चों को अपनी बात समझाने में सफल हुए, और कैसे आपने इसको आज जो विश्वविद्यालय है, ये स्वरूप जो आज हमारे सामने आधुनिक स्वरूप है, ये आप सबके अथक परिश्रम का परिणाम है, इसकी कैसे योजना बाबा ने आपको प्रेरणा देके बनवाई या आपने बाबा से प्रेरणा लेकर बनाई, कैसे हुआ ये सब चमत्कार?
मनोरमा बहन, हम सब जानते हैं कि हम तो जब बाबा के पास आए तो कुछ भी जानते नहीं थे, सच बताया आपको। काखा गा जैसे पढ़ने के लिए शुरू किया था, जो कुछ बाबा से पढ़ाई मिलती रही वो सीखते रहे, और ईश्वरी सेवा में भी जो कुछ किया है वो बाबा के इशारों से कह लो, बाबा की प्रेरणा से कह लो, बाबा की श्रीमत से कह लो, बाबा की मुरली से कह लो, उसी के आधार से सब कुछ होता रहा है। ये ठीक है कि हम आत्माओं में कल पहले वाले संस्कार भरे हुए हैं, लेकिन वो संस्कार फिर से उजागर हों, और उजागर होने के साथ साथ कार्यान्वित हों और ईश्वरी सेवा में लगते रहें, उसका तो प्रैक्टिकल अनुभव यही है कि कर्ण करावनहार कैसे हमें हर कदम पर गाइड करता है। हम सब बच्चों को ये बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उसमें विशेष जो बहुत बाबा के राइट हैंड के रूप में, जैसे आपने नाम लिया दादी प्रकाशमणि जी का, दीदी मनमोहिनी जी का, भ्राता जगदीश चंद्र जी का, भ्राता रमेश जी हैं, भ्राता ब्रिजमोहन जी हैं, और अभी दादी जानकी जी हैं, दादी गुलजार जी हैं, दादी रत्नमोहिनी जी हैं, जो बड़ी दादियां हैं आज, सभी ने अपना अपना बड़ा ही योग्यता अनुसार सुंदर पाठ बजाया है, आजीवन बजाया है। लेकिन उसमें देखा गया है कि इस विश्व ड्रामा के अंदर ہر ایک کا یونیک پارٹ ہے، الگ الگ پارٹ ہے۔ ہم سارا پریوار تو ایک ہیں، ایشوری پریوار ہے، یہاں زیادہ رشتے ناتے نہیں ہیں، اور کوئی ایک باپ اور باقی سب ہم بچے۔ تو آپس میں کیا ہوئے؟ بھائی اور بہن ہوئے، اس سے زیادہ رشتے تو کوئی ہے نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایشوری اسٹوڈنٹ ہیں، ایشوری اسٹوڈنٹ ہیں تو پڑھائی سب کی ایک ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ دادی کو مرلی الگ کوئی بابا سناتے ہیں اور ہم کو کوئی دوسری مرلی سناتے ہیں۔ دادی جی جو مرلی سناتی ہیں وہ خود بھی سنتی ہیں اور ہم بھی سنتے ہیں، اور واسطو میں بابا کی شریمت اس مرلی کے اندر ہی وشیش ہے۔ اور جو کچھ بھی ابھی تک جس طرح کی پریرنائیں مرلی سے ملتی رہی ہیں، ان کو تھوڑا سا کنسپچولائز کرنا، اپنے من کے اندر اس کا چترن کرنا اور اس کو کیسے کاریانوت کرنا، یہ باتیں تھوڑا سا ہر ایک کے انڈیویجول انٹرسٹ کی بھی ہوتی ہیں۔ جیسے آج کل میں دیکھ رہا ہوں آپ کو اور ہمارے بھراتا برج موہن جی کو شریمد بھاگوت گیتا کے بارے میں اتنے پروگرام کیے ہیں پچھلے ایک سال کے اندر، تو اس کا بھاو کیا ہے کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ پرم پتا پرماتما شیو ہی شریمد بھاگوت گیتا کے داتا ہیں، انہوں نے ہی وہ سروچ گیان جو ہے وہ اس دھرا پر آ کر سوئم دیا تھا اور پھر سے دے رہے ہیں۔ اس بات کو سدھ کرنے کے لیے آپ اتنا پریاس کر رہے ہیں، اور تاکہ سبھی کو پتا چلے تو سب اپنا اپنا جو ایشوری جنم سدھ ادھیکار ہے وہ پراپت کر سکیں، اپنا حق پراپت کر سکیں۔ اسی طرح سے یگ کی کئی سیوائیں ہیں، اور وہ سیواؤں کے لیے میں آپ کو ایک بہت نمرتا پوروک یہی کہوں گا کہ بابا نے، ساکار بابا نے چھوٹے پن سے مجھے، میں بہت چھوٹا تھا، چھوٹا ہی کہوں گا، گیان میں تو 20 سال کی عمر میں آیا تھا، اور within 2-3 years بابا نے جس طرح سے ایک ایک بات میرے کو سکھائی۔ لکش بابا کا یہی تھا جو میں اس سمے خود نہیں سمجھ پایا، بلکہ بابا کے اویکت ہونے تک بھی نہیں سمجھ پایا۔ سچی بات بتاؤں آپ کو کہ بابا نے ہر فیلڈ کا گیان میرے کو، مجھے کہتے تھے، میں جب ان کو بتاتا تھا بابا میں نے اس کو کورس کرایا، یہ کیا، تو چٹھی میں بھی لکھتا تھا تو بابا لکھتے تھے بچے یہ سب تو ٹھیک ہے، اور تم نے کیا کیا، تم کو تو آل راؤنڈ سروس کرنا سیکھنا ہے۔ اور میں سمجھ نہیں پاتا تھا آل راؤنڈ سروس کیا ہے۔ دھیرے 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 دیکھا کہ یگ سے سمبندھت کئی پرکار کی سیوائیں ہیں، اور وہ سبھی بابا نے ان کا انبھو کروایا۔ اب زیادہ ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ کلاس ہے، لیکن آپ سوچ سکتے ہیں وہ سارے اس طرح سے انبھو ہوئے۔ اور دادی پرکاش منی جی، دیدی منموہنی جی، دادی جانکی جی، ان سب کا بھی بہت بہت آشیرواد مجھے ملتا رہا۔ گلزار دادی جی کے دوارا بابا سے جب ملن ہوتا تھا، ان کے دوارا بھی، کہ جو بھی کوئی کاریہ کرنا ہے بابا کی شریمت کے بنا نہیں کرنا ہے، یہ ایک پکا بدھی میں رہا۔ چاہے کتنا بھی ہم آگے بڑھ جائیں، لیکن ہر قدم پر بابا کی شریمت لینے سے دیکھا گیا ہے کہ اس میں سفلتا سمائی رہتی ہے۔ بابا ایک طرف ہم کو وردان بھی دیتے ہیں کہ بچے ایشوری سیوا میں جو بھی آپ قدم اٹھائیں گے، سفلتا آپ کا ایشوری جنم سدھ ادھیکار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی بابا کی شریمت لے کر کے جب کاریہ کرتے ہیں تو اس میں انیک گنا شکتی بھر جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایشوری بدھی ہمیں مدد کرتی ہے۔
इसमें कोई दो राय नहीं भ्राता जी कि दुनिया में कुछ चीजें बड़ी प्रचलित हैं। जब हम कोई लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और उसमें हमें स्थूल कार्य लेने पड़ते हैं, तो स्थूल कार्यों में जिन लोगों से हम संपर्क में आते हैं उन्हीं के जैसा बोलना पड़ता है, कार्य कराना पड़ता है। आपने ज्ञान सरोवर के निर्माण में बड़ी सक्रिय भूमिका निर्वाह की, बहुत सारे इंजीनियर्स से आपको रोज मिलना बैठना होता था, दादी जी से भी आप बहुत प्रेरणाएं पाते थे। कई बार लोग कहते हैं सठे साठ्यम समाचरेत, कई बार लोग कहते हैं टिट फॉर टेट, वो लोग ऐसे हैं तो उनके साथ ऐसे बात करनी ही पड़ती है। हमने देखा है स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने जब भारत माता का मंदिर बनवाया था तो उनको लगा कि मैं बहुत वाचा में आ गया हूँ, बहुत स्थूल कार्यों में लग गया हूँ, अब मैं बिल्कुल मौन रहूंगा। और वो उसी दरमियान माउंट आबू आए थे तो कॉन्फ्रेंस में आए जरूर थे लेकिन बोले नहीं थे, उनका भाषण हमारी वेदांती बहन ने पढ़ के सुनाया था। लेकिन हमने आपको देखा है कि सारे कार्य कराते हुए भी आपने कभी टिट फॉर टेट वाला फार्मूला नहीं अपनाया, आपने कभी सठे साठ्यम समाचरित नहीं किया, आप हमेशा लाइट रहे और आपने सारे कार्य भी उनसे लिए। ऐसी कौन सी युक्ति आपने अपनाई?
हम किस कार्य के निमित्त हैं इस बात को हमेशा सामने रखा और अपने साथियों को एक टीम के रूप में अपने साथी उनको बना के चलते हैं। आज भी वही एक ही क्या कहें हमारी
एक ही सूत्र
कहो या एक ही मन में धारणा कहो कि हम क्या कर क्या रहे हैं, हमारा सब करने का भाव क्या है, किसके लिए कर रहे हैं। बाबा को तो कुछ चाहिए नहीं, भाई बहने भी हमारे सब अपने में सक्षम हैं, उनको भी कुछ नहीं चाहिए, तो किसके लिए कर रहे हैं हम। कुछ भी अगर सेवा करते हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, अपने लिए कर रहे हैं और उस सेवा में अपना भाग्य बना रहे हैं। अपने साथ में भाई बहनों को लेकर के करते हैं, उनका भी भाग्य बनता है, तन से भी बनता है, मन से भी बनता है, सहयोग से भी बनता है, हर तरह से। तो एक प्रकार से अगर हम सत्युग के मालिक बनना चाहते हैं, बाबा के वर्षे के हकदार बनना चाहते हैं और हर एक अपने मन में, आज मैं अभी आपसे पूछूं भाई सब कौन सा नंबर लेना चाहेंगे, तो हर एक हाथ उठाएगा पहला नंबर लेना चाहेंगे, कोई दूसरा लेना नहीं चाहता है, सिर्फ श्री नारायण और श्री लक्ष्मी बनने के सिवा और कोई नहीं कुछ बनना चाहता है। हाँ, जो कोई और बनना चाहता है जरा हाथ खड़ा करो, कोई राम बनना चाहता है, कोई सीता बनना चाहती है, कोई नहीं करेगा। तो हम सबका लक्ष्य भी एक है, ज्ञान भी एक है और देने वाला भी एक है और वो सक्षम है हमें देने के लिए। आज की मुरली के अनुसार भी आपने सुना कि बाप बच्चों को देने में सक्षम है हर तरह से। तो हमारा फर्ज क्या है कि जो उसका कार्य है, बाबा कर्ण करावनहार है, कर्णहार किस रूप में है इशारा देता है, लेकिन करावनहार किस रूप में है वो हम बच्चों के द्वारा प्रैक्टिकल में इस संसार में कार्य करवाता है। ये नहीं कि उन्होंने इशारा दिया और कार्य हो गया, ऐसा भी नहीं है, इशारा देते हैं और उस इशारे के अनुसार हम आपस में राय सलाह करते हैं, मीटिंग्स करते हैं और फिर उसके अनुसार कार्य करते हैं, तो सफलता भी मिलती है और उसकी रिजल्ट भी मिलती है। सभी जानते हैं कितने वर्षों से हर साल हमारी मुख्य भाई बहनों की, हर जोन के मुख्य भाई बहनें मीटिंग के अंदर मिलते हैं ना। मीटिंग किस लिए की जाती है? मीटिंग इसीलिए करते हैं कि एक तो आपस में मिलने से, साथ में बैठ करके बाबा की याद का अभ्यास करने से और फिर बाबा की सर्विस के बारे में अभी तक जो हुआ उसका पुनरावलोकन करने में और आगे करने के लिए नए नए प्लान बनाना, योजनाएं बनाना। जब संगठित रूप से हम लोग कोई कार्य करते हैं उसमें बहुत बहुत बल रहता है और उसकी रिजल्ट बहुत अच्छी है। प्रैक्टिकल में देखा गया है कि वो हर एक जोन के अंदर, हर एक बल्कि जोन तो क्या, पर देश विदेश के अंदर इस तरह से जब कार्य चलते हैं तो बाबा का कार्य दिन दुगनी रात चौगुनी आगे बढ़ रहा है। और आप प्रैक्टिकल देख रहे हो, कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े हॉल के अंदर हम बैठ करके आपस में मिलेंगे, सोचा था कभी आपने? लेकिन किसने करवाया ये? बाबा ने खुद करवाया। आप जिस हॉल के अंदर बैठे हैं यहां पर 31 दिसंबर 1996 उस दिन इसका उद्घाटन हुआ था। लेकिन मेरा ख्याल है अप्रैल की 10 तारीख थी 96 की, 10 अप्रैल को इधर सिर्फ टेंट लगा करके बाबा का मिलन हुआ था। और उस समय बाबा ने कहा अगर बच्चे यहां पर हाल बना देंगे तो 31 दिसंबर को बाप दादा स्वयं आकर के इसका उद्घाटन करेंगे। आप सोचिए अप्रैल और दिसंबर, आठ मास के अंदर ये हाल तैयार करना आप सोच सकते हैं। हमारी टीम के अंदर किसी ने ये भी कहा भाई ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे भी था। लेकिन आपस में राय करके, दादी जी के साथ बैठ करके और बड़े भाइयों के साथ बैठ करके आपस में राय की कि अगर स्वयं भगवान ये कह रहे हैं, निश्चय का सबूत है ये कि अगर बाबा खुद कह रहे हैं कि अगर ये बना देंगे हॉल तो मैं स्वयं आकर के इसका उद्घाटन करूंगा, इससे बढ़कर के हमारे लिए ऑनर क्या हो सकती है। उसी निश्चय से जब हम लोगों ने विचार किया, प्लानिंग किया इसका, तो आप सोचेंगे कि ये हॉल पूरा कंप्लीट हो गया 31 दिसंबर 96 में। सिर्फ दो शीट लगनी बाकी रह गई थी, लास्ट की बे में दो शीट नहीं लगी थी, बाकी सब कंप्लीट था। स्टेज भी तैयार थी और कुर्सियां वगैरह सब कुछ हालांकि एकदम फ्रेश था। उसके लिए क्या किया है, सबसे बड़ी बात होती है कि टीम वर्क बहुत काम करता है। दादी प्रकाशमणि ने अपना बहुत समय दिया था उसके लिए, खास टीम को इंस्पायर करने के लिए हफ्ते में एक दिन वो आकर के सभी को मिलती थी और सबके साथ बैठ के पिकनिक करती थी, टोली पिकनिक, और समाचार लेन देन करती थी। और इतना जरूर है कि कोई ध्यान देने के लिए चाहिए तो मैं रोज ऊपर से नीचे आता था, माउंट पे रहता था, रोज सवेरे इधर आना और शाम को वापस जाना। लेकिन आठ मास ऐसा लगा कि हमने कल काम शुरू किया और आज पूरा हो गया। इस तरह से ये उसमें टीम काफी, जहां एक टीम थी वहां तीन तीन टीम लगाई थी। और तीन तीन टीम, आप सोचिए, एक बीच में टीम काम कर रही थी, एक इधर से कर रही थी, एक उधर से कर रही थी। देखने में तो ये स्थूल कार्य है लेकिन आप देखेंगे कि ऐसा बड़ा हॉल इस तरह का बिना पिलर के भारत में और कहीं नहीं है। 450 لمبا ہے، 250 چوڑا ہے، اس کے علاوہ برانڈے وغیرہ ہیں۔ تبھی تو اس میں 20,000 کے قریب بھائی بہنیں بیٹھ سکتے، نہیں تو کیسے بیٹھیں گے۔ تو یہ چیز دیکھی گئی کہ اگر بابا کی جو شری مت کہو، جو ان کے مہاواکیہ کہو، اس کو آپ سیریسلی لیتے ہیں، اس کو ہنسی میں نہیں اڑا دیتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہیں، اس کو سیریسلی لے کر کے ہم اس کو اچھی طرح سے گہرائی میں سوچتے ہیں کہ اس کے کرنے سے ہم کو فائدہ کیا ہوگا، اور اگر نہیں کرتے تو نقصان کیا ہونے والا ہے۔ کئی باتیں اس کی آدمدی انت کی سوچتے ہیں، اس کے پیسوں کے بارے میں بھی سوچنا پڑتا ہے، نقصان بھی زیادہ نہ ہو جائے، لیکن تھوڑا بہت کہیں چھوٹا موٹا نقصان ہوا تو وہاں دل بڑی رکھنی چاہیے۔ یہ بھی نہیں کہ بس چھوٹی سی بات کے کارن آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ناراض ہو جائے۔ اس بات میں دادی جی نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، بابا نے بھی بہت کچھ سکھایا، ساکار نے بھی، اویکت نے بھی، اور ان کی حوصلہ افزائی سے، ان کے شاباش ملنے سے، ٹیم ورک جس طرح سے ہوتا ہے میں نے دیکھا پریکٹیکلی، وہ ٹیم آپ دیکھ رہے ہو کیا سے کیا کر سکتی ہے۔ ایک چھوٹا سا پہلے مدھوبن تھا، پھر اس کے بعد اوم شانتی بھون، اور اس کے پاس بھی بلڈنگز بنی، وہ بھی چھوٹی ہو گئی، اور بابا نے سکھ دھام کا اوپر کا جب ادگھاٹن کیا تھا، اس سمے ہی بابا نے اشارہ دیا تھا آس پاس میں دیکھو کوئی زمین ملتی ہو تو، کیونکہ یہ سب چھوٹا ہو جائے گا۔ تو گیان سروور والی زمین ڈھونڈی، گیان سروور والی زمین لی تو وہ بھی چھوٹی ہو گئی، پھر یہاں شروع ہوا۔ پھر ہمارے بھوپال بھائی نمت بنے اس زمین کے لیے، اور دھیرے دھیرے اس جگہ پر پھر پہلا پروگرام 94-95 میں ہوا تھا، 95 میں ایک پروگرام، پھر 96 میں دوسرا پروگرام، بنا بلڈنگز کے تھا، ٹینٹس کے اندر تھا۔ اور اس کے بعد پھر یہ دیکھا گیا کہ نہیں، بابا کے بچے اتنے اچھے اچھے میٹیریل بیک گراؤنڈ کے حساب سے سوتے ہیں، اتنے اچھے اچھے مکانوں میں رہنے والے وہ ٹینٹ میں رہیں گے آ کر کے، نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ سوچئے کہ ایک سال کے اندر یہ سارا جو شانتی ون ہے ایک سال میں تیار ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ؟ تو یہ ہے ایک خاص، میں اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ بابا نے کوئی بھی اشارہ دیا ہے، کوئی بھی گیان کی بات کہی ہے، تو اس پر پورا نشچے چاہیے، نشچے بدھی وجینتے پریکٹیکل انبھو ہو رہے ہیں۔
بہت سندر، دیوتاؤں کے کارے ایسے ہی ہوتے تھے، ایک سنکلپ ماتر کیا اور کارے سمپن ہو گیا۔ میں بھی دیکھا کرتی تھی دادی جی کچھ اگر کہتے تھے تو بھراتا جی بنا کسی عذر کے سویکار کر کے وہ کارے سمپن کر کے دے دیتے تھے۔ اب میں ایک اپنے انتیم سوال کی اور آ رہی ہوں، جو انبھوتیوں اور احساسوں سے جڑا ہوا ہے، آپ کی بہت خیاتی ہے اس چھیتر میں، یوگ کی جو گہن انبھوتیاں ہیں، کیونکہ بابا سب کچھ کرتے ہوئے بھی جیون مکت ہوا، آپ کو بھی دیکھتے ہیں کہ سارے کاریہ کرتے ہوئے آپ یوگ کی بھی جب انبھوتی کرانے لگتے ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے سنت اس بات سے پیچھے ہٹ گئے کہ یہ تو گونگے کا گڑ ہے، گڑ میٹھا ہے، یہ دنیا کہہ سکتی ہے، کتنا میٹھا ہے، کتنا کم ہے، کتنا زیادہ ہے، کچھ نہیں کہہ سکتی۔ لیکن انبھوتیوں کو بانٹ لینا، وہ بھی بھارت والے بابا کے بچوں کے ساتھ، ودیش کے بچوں کے ساتھ، آپ نے اسی طرح بانٹا ہے، اور کئی بار ساکار کی جھلک فلک لوگوں نے انبھو کی، بھائی بہنوں نے انبھو کی۔ تو یہ گہرائی سے یوگ کی انبھوتی کرنا اور کرانا آپ کو کب سمے ملتا ہے کرنے کا، बाबा तो सारी रात जग के करता था, क्या आपने बाबा से सारी रात जग कर ये प्रेरणा ली?
ये मुश्किल है। शरीर को जितना आराम चाहिए वो करना ही जरूरी है, और करते रहे तो ठीक रहता है। इतना जरूर है कि मैं जब बाबा को अपना चार्ट भेजता था तो उसमें, कभी कभी बॉम्बे में रहते थे तो सुबह को उठने में देर हो जाती थी, 4 की बजाय 4:30 हो जाता था, तो बाबा कान पकड़ता था, लिखते थे, बच्चे तुम राजयोगी हो, कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें 4 बजे उठ करके बाबा की याद में बैठना है। बहुत पुरुषार्थ करता था मैं, पर चलते चलते फिर किसी दिन ऐसा हो जाता था, मिस हो जाता था, पर चार्ट बाबा को लिख के भेजते रहते थे, और बाबा चार्ट को देख करके फिर वापस लिखते थे, बच्चे अभी भी और आपको पुरुषार्थ करना है। तो इस तरह से देखा गया कि अगर टीचर इतना ऊंच है तो स्टूडेंट भी फिर उसी अनुसार पुरुषार्थ करते हैं। डायरेक्ट बाबा की पालना मिल रही, उसकी रिजल्ट ये है। मैं तो यही कहूंगा कि मैं जब से शुरुआत की है, और सब बातें बाद में होती हैं, पहला 1.25 घंटा बाबा की याद का, और उसके बाद मुरली पढ़ने का, जो रोज की मुरली होती है, पहले वो पढ़ता हूं, और उसके बाद नहाना धोना बाद में होता है। लेकिन ये चीज आज से नहीं, 59 साल से लगातार चली आ रही है। और मुरली का जो आनंद है, मेडिटेशन करने के बाद जो मुरली का आनंद है, उसकी जो गहराई है, अगर आप, क्योंकि आप बहुत बड़ी स्कॉलर हैं, स्कॉलरली स्टडी करें, थोड़ा आराम से बैठ करके मुरली का अध्ययन करें, एक एक लाइन को थोड़ा गहराई से सोचें, वो हमारी बड़ी दीदी और दादी आपस में बैठ करके बैडमिंटन खेलते थे, उसको ज्ञान की बैडमिंटन कहते थे, तो उसमें क्या बातें लेते थे कि इससे लाइट क्या मिली और इससे माइट क्या मिली, हाँ, इससे रोशनी क्या मिली और इससे शक्ति क्या मिली, एक 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 यूं कहें जो उसमें पॉइंट्स होती थी मुरली की। और आप जानते हो साकार मुरलियों के अंदर कम से कम 20-25 पॉइंट होती है, और वो 20-25 पॉइंट को ध्यान से नोट करना, उसकी गहराई में जाना, उसकी स्टडी में बहुत टाइम चाहिए। वास्तव में एक जीवन काल में इतना सब स्टडी कर ले हम, बड़ा मुश्किल लगता है। ऐसे ही नहीं लोग कहते थे कि ये जो आप कह रहे हो कि मुक्ति और जीवन मुक्ति एक ही जन्म में प्राप्त कर लेंगे, इसको तो कई जन्म चाहिए। तो मैं प्रैक्टिकल देखता हूं कि उस स्थिति तक आने के लिए एकदम मन में कभी नेगेटिव कोई संकल्प ना आए, किसी के प्रति कोई नेगेटिव भावना ना रहे, और सदा ही पॉजिटिव आए, पॉजिटिविटी मन में आए, हर एक के प्रति पॉजिटिव थॉट्स आए, उसके लिए काफी मेहनत है, बहुत मेहनत है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, बहुत महीनता से अपने ऊपर अटेंशन देने की जरूरत है। और फिर देखा गया है कि इसके फलस्वरूप अगर अटेंशन देते हैं तो बाबा की मदद भी बहुत मिलती है। मैं इस बात को देखता हूं कि जब से बाबा के संपर्क में आया, 10 साल तो बाबा के साथ साकार में बिताए, और साकार के बाद जब बाबा अव्यक्त हो गए तो अव्यक्त बाप दादा के साथ, जब से अव्यक्त बाबा का मिलन शुरू हुआ, एक भी मिस मैंने नहीं किया है। बीच बीच में तबीयत ऊपर नीचे होती थी, लेकिन मैं किसी भी एक अपने पुरुषार्थ से मुरली के समय जरूर पहुंच जाता था, और इसका फल मुझे बाबा ने ऐसे टाइम पर दिया जब मैं नहीं आ सकता था, तो बाबा ने अपने रथ को ही बॉम्बे भेज दिया। तो इस तरह से देख रहा हूं कि हम बच्चे अगर हिम्मत रखते हैं, लक्ष्य हमारे मन में क्लियर रहता है और पुरुषार्थ के लिए कभी थकते नहीं हैं, तो आगे ही आगे बढ़ना है, आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे और अवश्य ही बाप समान बनने का लक्ष्य जरूरी है और होना भी चाहिए। और इसलिए मैं कहूंगा कि बाबा ने जो शुरू से कहा है फॉलो फादर एंड मदर, क्यों कहा कि उन्होंने इस तरह का अपना अभ्यास किया कि कोई कमी नहीं रही उनके अंदर, तो उनके कदम पे कदम रख करके हम चलने का पुरुषार्थ करें। थोड़ा बहुत कभी डगमग भी हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य रखने से लक्षण आ ही जाते हैं।
बहुत अच्छी बातें हमें सुनने को मिली। एक सवाल और, चंद सफलताएं हमें मगरूर बना देती हैं। थोड़ी सी भी सफलता मिलती है या समाज हमारा सम्मान करता है तो कैसा लगता है। बाबा ने भी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और मुझे लगता है कि आपने भी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारतवर्ष में तमाम संस्थाओं ने, प्रदेश सरकारों ने सम्मान किया, विदेश में भी आपका मान सम्मान हुआ, और ब्राह्मणों ने तो बेताज बादशाह बनाकर आपको रखा है। बेगमपुर के बादशाह आप पहले से थे, लेकिन कभी आपके व्यक्तित्व में मगरूरियत की कोई झलक नजर नहीं आई। ये स्टेज आपने कैसे प्राप्त किए?
कितनी सहज बात है, जब बाबा खुद कह रहा है आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट फादर, यही कहता है ना, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों को याद प्यार, और फिर बाप की नमस्ते, यही होता ना, रोज सुनते हैं। बाबा ही हम बच्चों को नमस्ते कर रहा है तो हम तो बच्चे हैं, तो हम तो जो भी हमारे भाई बहनें इतनी सेवाएं करते हैं उसको नतमस्तक होते हैं, चाहे थोड़ा सा भी कोई करता है। आपका यहां बैठना ही बहुत बड़ी सेवा है, ये जो वीडियो निकल रहा है सारे संसार में जा रहा है इस समय, आपको देख करके कितना लोग उमंग में आएंगे, तो ये कोई कम बात है क्या? तो ये बात मेरे मन में सदा रहती है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी अगर देखो, कई बच्चे आकर के बाबा की बातें करते हैं, इतना अच्छा लगता है। बहनें हैं जो टीचर्स बनती हैं, इतनी सेवा करके, मेहनत करके भाई बहनों को यहाँ लेकर के आती हैं, तो वो इतना उनका त्याग, छोटेपन में इतना बड़ा त्याग, ये कोई छोटी बात नहीं है। नहीं तो आजकल की लड़कियां क्या करती हैं, आप देखते हो ना, सूट वूट पहन करके और इधर जाना उधर जाना, क्या क्या करते हैं, खाना पीना, मौज मनाना। तो ऐसी ऐसी बातों से सबसे दूर होकर के और इतनी छोटी उम्र में सफेद साड़ी पहनना, आप सोचो कब पहनते हैं सफेद साड़ी दुनिया में। लेकिन बाबा ने बहुत अच्छी बात की, सरस्वती मैया का जो लिबास कहो वो सफेद, उनको जो वाहन दिया है वो भी सफेद, ठीक बात, और सफेद बाबा ने क्यों सफेद कपड़ा पहना है उसका कारण है, मैंने बहुत ध्यान से सोचा कि पवित्रता की निशानी है, एक सफेदी जो है पवित्रता की भी निशानी है, और फिर इसमें प्रैक्टिकली देखा गया आप सफेद कपड़ा एक दिन से ज्यादा नहीं पहन सकते, उसको दूसरे दिन धुलाई करना जरूरी है, तो हाइजीनिक भी बहुत है आपके लिए। طبیعت کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اور اس طرح سے کئی باتیں ہیں, اور بابا نے جس طرح سے پریکٹیکل میں اپنے جیون کال میں ہم بچوں کے سامنے ایگزامپل کئی سارے ان کے فوٹوز دیکھتے تھے, تو یگ کی ہر ایک کاروبار کے اندر بابا اور مما پارٹیسپیٹ کرتے تھے, اور دادی جی کو بھی دیکھا, دیدی جی کو بھی دیکھا, آپ نے پریکٹیکل دیکھا. اوم شانتی بھون بننے سمے پتھر جب وہاں توڑتے تھے اس کو اٹھانا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, اس سمے خود آ کر کے ہم سب کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی, سب کو اچھی طرح سے امنگ اتساہ دلانا, ٹولی کھلانا, تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ دادیاں تو اپنی موج میں بیٹھی ہیں اور ہم لوگ یہ پتھر اٹھا رہے ہیں. ایسا نہیں تھا. تو جو بابا کا ایک مہا واقعہ ہم نے شروع سے سنا ہے, روز سنتے ہیں, روز پڑھتے ہیں, کہ آئی ایم یور موسٹ اوبیڈینٹ سرونٹ فادر, موسٹ اوبیڈینٹ. اب آپ سوچیں گے وہ موسٹ اوبیڈینٹ کیسے ہے, پریکٹیکل دیکھ لو. بابا کے لاکھوں بچے ہیں, جو بھی بابا سے کوئی سنکلپ کرتا ہے بابا ان کا سنکلپ پورا کرتا ہے. تو موسٹ اوبیڈینٹ نہیں ہوا, کچھ بھی سوچتے ہیں پریکٹیکلی وہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں بابا کے ساتھ من ہی من میں بات کرتے ہیں, بابا ہماری وہ آش پورن کرتا ہے, چاہے بھارت میں ہیں, چاہے ودیش میں ہیں, کہیں پر بھی ہیں. تو اس پرکار سے میں دیکھتا ہوں کہ بابا ہم بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اس کو بھی سن کر کے, ہم سوچیں گے ہم نے تو من میں ہی سوچا, لیکن بابا تو کہتا میرے کمپیوٹر میں سب کچھ پہنچ جاتا ہے, میرا سپریم کمپیوٹر ہے اور اس کا ریٹرن دیتا ہے. یہ نہیں کہ نہیں, سچی دل پر صاحب راضی پریکٹیکل دیکھنے میں آتا ہے. ہم جتنا سچی دل سے یاد کرتے ہیں اور کوئی اچھے کاریہ کے لیے نمت بنتے ہیں, تو بابا اس میں ہم کو سفلتا پردان کرتا ہے. اور جب بابا دینے والا ہے تو بہن جی پھر ہم لوگ تو سرونٹ ہی ہوئے نا. تو بابا اگر موسٹ اوبیڈینٹ سرونٹ ہے بچوں کا, تو بھائی بہنیں بھی ایک دو کے لیے شبھ بھاونا رکھنے والے کہہ لو, سہیوگی کہہ لو, سنیہی کہہ لو, جو بھی آپ شبد یوز کر لو, پر ہیں ہم بھی بے حد کی سیوا میں, گاڈلی سروس میں, گاڈلی سروس. جب پتر لکھتے ہیں انگلش میں لکھتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں, ان گاڈلی سروس. اچھا اگر ہندی میں لکھتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں, ایشوری سیوا میں. تو ایشوری سیوا تو بابا نے سکھائی پریکٹیکلی, کہ وہ اگر موسٹ اوبیڈینٹ سرونٹ ہے تو ایشوری سیوا تو ہے ہی, کہ جب ہم سوئم کو اپنی ہستی کو, کیا ہے وہ ایک شعر ہے, مٹا دے اپنی ہستی کو
اگر کچھ مرتبہ چاہے, دانا خاک میں مل کے گلے گلزار,
گلو گلزار ہوتا ہے. تو ہم بھی سبھی بچے بابا کے, بابا کے رائٹ ہینڈ ہیں, یہ پکا مان کر کے چلنا چاہیے. رائٹ ہینڈ, بابا ہمیشہ کہتا تھا رائٹ ہینڈ. رائٹ ہینڈ کیوں کہتا تھا, کیونکہ رائٹ ہینڈ سے سب شبھ کاریہ ہوتے ہیں, تو ہم سب شبھ کاریہ کرنے کے نمت ہیں. اوم شانتی.
بہت بہت شکر گزار ہیں ہم. بھراتا جی نے بڑے میٹھے میٹھے انوبھو سنائے. اتہاس پڑھنے والے تو ہم سب ہیں, لیکن آپ کی گنتی اتہاس پڑھنے میں نہیں رچنے والوں میں ہوتی ہے. ہر قدم ایک نظیر ہے, اور آپ نے ہم سب کو جو پریرنائیں دی ہیں اس کو آگے یگ کی پرمپرا کے انوسار یہ بھائی بہن بھی لے کر چلیں گے, ہم سب بھی لے کر چلیں گے. پنہ ایک بار کوٹی کوٹی دھنیواد ہے.
اب تھوڑا میڈیٹیشن ہو جائے. ابھی بندی لگائیں گے نا سبھی. ہاں کیا کریں گے, کس کو فالو کریں گے؟ فالو فادر اینڈ مدر. بس سبھی سے آدرنیہ جانکی دادی جی اور رتن منی دادی جی تو ملے. کئی بھائی بہنوں کا سنکلپ چلتا ہے, میرے سے پوچھتے بھی ہیں دادی گلزار کیسے ہیں. سبھی کو پتا ہے کہ سواستھ لابھ کے لیے بامبے میں جو اپنی ہاسپٹل ہے وہاں پر ہیں, پرائیویٹ روم میں ہیں, لیکن دھیرے دھیرے سواستھ بہتر ہو رہا ہے, بہت دھیرے دھیرے. تو اس لیے آج شام کو سبھی سے اویکت ملن کا ہی رہے گا, ویکتیگت آنا ان کا کٹھن ہے. ابھی تو ہو سکتا ہے بعد میں جلدی ہی ٹھیک ہو کر کے واپس آئیں, لیکن ابھی آج تو نہیں آ سکیں گے. تو کیا کریں گے آپ سبھی, अपनी शुभ भावना और शुभ कामना के संकल्प और उसके साथ साथ बाबा की याद का योग का सहयोग देंगे ताकि दादी जी जल्दी जल्दी ठीक होके आ जाएं। नीलू बहन उनके साथ में है, बहुत बहुत अच्छी तरह से ध्यान दे रही हैं। योगिनी बहन वहां पर हैं, डॉक्टर अशोक मेहता हैं और भी बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी ध्यान दे रहे हैं। सभी जानते हैं कि रथ 49 वर्ष रथ के द्वारा शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने उनके द्वारा हम बच्चों को ज्ञान रत्नों से भरपूर किया है, खासकर दैवी गुणों की धारणा के लिए। अव्यक्त मुरलियां आप पढ़ेंगे, कितनी गहराई की धारणाएं बाबा ने सिखाई हैं। तो दादी जी की अथक सेवा जो है 49 वर्ष रही है साकार बाबा के अव्यक्त होने के बाद। अब उनकी शरीर की आयु 90 है, सिर्फ 90 है। दादी जानकी के सामने तो ऐसा ही कहने आएगा, वो 102 की हैं और गुलजार दादी 90 की हैं, लेकिन 90 भी तो कम नहीं है। तो थोड़ा अभी जिस तरह से शरीर धीरे धीरे साथ दे रहा है, वो देता रहे तो हम आगे भी उनके द्वारा बाबा के महावाक्य सुनते रहेंगे, ऐसी शुभ कामना हम रखते हैं। ओम शांति। ठीक है, थैंक यू।